श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 32 श्लोक नंबर 5 प्रसंग कर्म बंधन ये सुधर्मान दयन्ति धीरा कामार्थ हेतवे निसंगनेस्त कर्माणा प्रशांत शुद्ध चेतसा। तात्पर्य जो बुद्धिमान है और शुद्ध चेतना वाले हैं वे कृष्ण भक्ति में पूर्णतया संतुष्ट रहते हैं। वे प्रकृति के गुण से मुक्त होकर वे इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म नहीं करते, अपितु तो वे अपने कर्म को वह कर्म में लगे रहते हैं और विधान अनुसार कर्म करते हैं। कृपया दोहराइए, जो बुद्धिमान है और शुद्ध चेतना वाले है वे कृष्ण भक्ति में पूर्णतया संतुष्ट रहते हैं। वे प्रकृति के गुण से मुक्त होकर वे इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म नहीं करते हैं, अपितु वे अपने अपने कर्मों में लगे रहते हैं और विधान अनुसार कर्म करते हैं। तात्पर्य इसी प्रकार के पुरुष का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण अर्जुन है। अर्जुन क्षत्रिय था और उसका धर्म युद्ध करना था। सामान्यतया राजा अपने राज्य के विस्तार के लिए युद्ध करते हैं और इंद्रिय तृप्ति के लिए उस पर राज्य करती हैं। जहां तक अर्जुन का प्रश्न है, उसने अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए युद्ध करने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि यद्यपि स्वजनों से युद्ध करके वह साम्राज्य प्राप्त कर सकता है, किंतु वह उसे लड़ना नहीं चाहता। किंतु जब कृष्ण ने आदेश दिया और जब भगवत गीता के उपदेश को अस्वस्थ हो गया, वे उनका धर्म कृष्ण को प्रसन्न करना है, जो बहुत युद्ध करने लगा। इस प्रकार उसने अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं अपितु भगवान के संतोष के लिए युद्ध किया। जो लोग अपना निर्धारित कर्म इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं अपितु भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं वे निसंग कहलाते हैं, अर्थात वे प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त होते हैं। न्यस्त कर्माण बताता है कि उनके कर्म का फल भगवान को प्रदान किया जाता है। ऐसे लोग अपनी अपना कर्म कर्तव्य निभा करते प्रतीत होते हैं, किंतु ऐसे कर्म निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए न होकर भगवान के लिए संपन्न किए जाते हैं। ऐसे भक्त प्रसन्नता अर्थात संतोष कहलाते हैं। शुद्ध चित्त का अर्थ है कृष्ण भावित अर्थात जिसकी चेतना शुद्ध हो चुकी है। चेतना शुद्ध न रहने पर मनुष्य अपनी को ब्रह्मांड का स्वामी मानता है, किंतु शुद्ध चेतना होने पर वह अपने को भगवान का शाश्वत दास मानता है। अपने को भगवान के शाश्वत दास के पद पर बैठकर और निरंतर उन्हें उनके लिए काम करते हुए वह वास्तव में संतुष्ट हो जाता है। जब तक कोई निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है तब तक वह चिंता से पूर्ण रहता है। सामान्य चेतना तथा कृष्ण चेतना या भक्ति में यही अंतर है। ये सुधर्मान दुहंति धीरा कामार्थ हेतवे निसंगा नेस्त कर्माण प्रशांत शुद्ध चेतना। जो बुद्धिमान है और शुद्ध चेतना वाले हैं वे कृष्ण भक्ति में पूर्णतया संतुष्ट रहते हैं। वे प्रकृति के गुण से मुक्त होकर वे इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म नहीं करते, अपितु तो वे अपने अपने कर्म में लगे रहते हैं और विधान अनुसार कर्म करते हैं। प्रातःकालीन भागवत कक्ष में आप सभी को अभिनंदन व स्वागत है। तो यहाँ पर देवहूति एवं कपिलदेव भगवान का वार्तालाप का माध्यम से आप सुनते आ रहा है कि विपरीत कर्म का कैसे बंधन होता है। एवं जीव को कैसे बांध देता है एवं जीव का गति क्या क्या होता है। इसी पर यहां पर ये जो प्रसंग चल रहा है कि कर्म बंधन, कर्म बंधन क्या भौतिकवादी लोग को बांधता है क्या भक्त लोग को भी बांधता है। इसमें प्रोपा तात्पर्य में लिखते हैं कि और अनुवाद में लिखते हैं कि जो बुद्धिमान है और सोच चेतना वाले हैं वे कृष्ण भक्ति में पूर्णतया संतुष्ट रहते हैं। वे प्रकृति के गुण से मुक्त होकर वे इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म नहीं करते अपितु वे अपने कर्म में लगे रहते हैं और विधान अनुसार कर्म करते हैं। तो तात्पर्य में इसका उदाहरण है अर्जुन का, पहले लाइन में ही ये बतला रहे प्रभुपाद जी ने। तो जो वर्णाश्रम विभाग के अनुसार चार वर्ण एवं चार जो आश्रम है उसको अपना वृत्ति अनुसार बा स्वधर्म अनुसार कर्म करना चाहिए। तो अर्जुन ने साफ मना कर दिया क्योंकि ये परिवार को बा बंधु बांधव सुजन को हत्या करना, ये गुरुजन को हत्या करना, ये तो सबसे पाप है। ये पाप कर्म से हमको नरक भोगना पड़ेगा। लेकिन भगवान क्या बतलाए कि नहीं, आप वर्णाश्रम धर्म का अनुसार आप जो कैटेगरी का है आप क्षत्रिय है, क्योंकि क्षत्रिय को स्वभाव अनुसार आपको लड़ना ही पड़ेगा। क्यों कि वो तो बता रहा था कि मैं संन्यास लेंगे बा भिखारी बन के बा माधुगिरी के ब्रज में रह के भजन करूंगा, लेकिन भगवान बोले नहीं, इसी से तुमको नरक जाना पड़ेगा। आज तुम युद्ध करके यदि ये तुम्हारे जो विपक्ष दल को आप परास्त करके वह हत्या कर दो तो उसमें तुमको पाप नहीं लगेगा, तुम्हारा जस और बढ़ेगा, नहीं तो तुम्हारा जो कीर्ति फैला हुआ है त्रिभुवन में लांडी विधारी अर्जुन का नाम से तुम्हारा क्या होगा ना, अकीर्ति भर जाएगा एवं तुमको नरक भोगना पड़ेगा, कर्म बंधन में तुम फंस जाओगे। एवं भगवान गीता में भी बताया क्या ना, जगरतात कर्मण नत्र लोकय कर्म बंधन। अब कर्म बंधन कैसे बनता जीव को ना, भगवान का लिए वो लोग कर्म नहीं करते, अपना परिवार को एवं अपना देश को एवं अपना शरीर को पालने के लिए जो कर्म है ये कर्म बंधन है। ब्रह्मा जी भी बतलाए कि कर्माणि निर्दहाति किंतु च भक्ति भाजम, एक कर्म बंधन सबके लिए है। अरे ऐसे कर्म है एक कर्म का गति कोई समझ नहीं सकता है, कर्मणा गहना गति, एक कर्म का आज परिणाम होता है यह गहन अंधकारमा गति बहुत दुस्तर होता है। एकमात्र इसको भक्ति का माध्यम से हम काट सकते हैं। कर्माणि निदहाति किंतु च भक्ति भाजम, तो भक्ति जीवन में भी हम भक्ति में भगवान को बांधना चाहिए एवं हम भी बंध जाना चाहिए। लेकिन भक्ति युग तो हम लोग शुरू कर देते हैं लेकिन यहां भी हमारे जो शाखा उपशाखाएं हैं एवं भौतिक वासनाएं हैं ये हमको भक्ति में बाधक होता है। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी उल्लेख करते हैं, भक्ति मुक्ति प्रिया जावत पिशाची हृदय वर्तते, जब तक मुक्ति पाने के लिए भी आकांक्षा रहेगा, भोग करना वासना तो छोड़ दीजिए, जब मुक्ति जगह धर्म अर्थ काम मुख्य वर्णाश्रम धर्म का अनुसार हम यदि गृहस्थ ना ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास आश्रम ग्रहण भी कर ले एवं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये आश्रम को भी हम आरो ग्रहण करके आरो भजन में लग जाए, जब तक ये मुक्ति रूपी जब पिशाची है हमारे हृदय में बैठे हुए हैं तब तक हम भक्ति जीवन में बढ़ नहीं सकते। एवं यह भी बंधन का कारण है। उदाहरण दिया जाता है कि लोहा का जंजीर का एवं सोने का जंजीर एवं चांदी का जंजीर, लेकिन उसमें है जब कैदी को बांध दिया जाता है, लेकिन ये तीनों ही बंधन का कारण है और बंधन ही है। इसलिए अर्जुन को भगवान साफ साफ कह दिए कि त्रिगुणा विषय भेदा निस्त्रीय गुण भवा अर्जुन, तुम ये सत्व गुण से भी ऊर्ध्व को जाओ, क्योंकि रजा गुण में तो भौतिक भोग का वासना ज्यादा होती है, राजा कर्म राजा एवं तब गुण तो ऐसे है चेतना और संकुचित भाव में रहता है कि कोई ही ठिकाना ही नहीं है। इसलिए अर्जुन को माध्यम बना के भगवान बतला रहे क्या ना निस्त्रीय गुण न भवा अर्जुन, ये सत्य गुण से भी आप ऊपर पूजा, क्योंकि नंद महाराज वसुदेव एवं उन लोग क्या विशुद्ध सत्यम है थे। इसलिए भगवान हृदय में वा शुद्ध चेतना वाले क्यों ना सत्यम विशुद्धम वासुदेव सबितम, ये तो यहां प्रभुपाद भी शोध चेतना वाले जो शोध चेतना है, शोध चेतना कैसे होगा, चैतन्य महाप्रभु इसका परिभाषा देते हैं इसी कालतकम में, चेत दर्पण मार्जनम भव महा दावागिनी निर्वापण श्रेय कौरव चंद्रिका वितरण विद्याबोधु जीवनम। उसका बाद क्या होता है ना आनंदाम्बु दिवादनम प्रतिपद पूर्ण मृता साधनम सर्वात्म समर्पणम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। पहले चेतना को शुद्ध करने के लिए, ये हृदय को शुद्ध करने के लिए हमको भगवान का नाम जब तक कर रहे हैं हम लोग, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर बतलाते हैं क्या बहु जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन तब दोनों पाए कृष्ण पाए प्रेमधन। तो हम यदि जिंदगी भर भगवान का नाम भी लिया तो हम हमको क्या करना है, नाम लेने के साथ साथ ना अपराध से मुक्त होना चाहिए, तब हृदय बाद ये मन आरा शुद्ध होगा। चेत दर्पण मार्जनम भव महा दावागिनी निर्वापण, ये चेत रूपक दर्पण जब शुद्ध हो जाएगा तब क्या होगा ना भव महा दावागिनी निर्वापण, ये भव संसार में जो दावागिनी ही लगा हुआ है उसको कोई जलाते नहीं है, अपना से ही जल जाता है। दावागिनी दो प्रकार होता है, एक तो ये भौतिक जगत में जो जंगल में लग जाता है ये है दावागिनी है, इसलिए सुबह सुबह जो हम गुरुवाष्टक को पाठ करते हैं संसार दावा नलनी ढलो को प्राणाय कारणम घना घनतु प्राप्त स कल्याण गुणान वसा बंदे गुरु सी चरणारविंद। और एक बड़वा नल कहां लगता है समुद्र में, कोई देखे हैं समुद्र में हम लोग सब सुने हैं, कोई शुद्ध भक्त है तो देख सकते हैं ना देखा होंगे। तो भव महादावाग्नि निर्वापणम होने का बाद श्रेय कौरव चंद्रिका वितरणम विद्याबोधु जीवनम, उसका बाद क्या होगा ना आनंदाम्बुदि वर्धनम, तब हम ये आनंद अम्बुदि वा समुद्र में हम तैर सकता है। अरे हम अभी जो तैर रहा है ये समुद्र में क्या ना कर्म बंधन का समुद्र में हम तैर रहा है अभी, इसलिए किनारे लगाने के लिए जो साधु वैष्णव है उनका सहारा लेना चाहिए। जैसे यहां देवहूति ने पुत्र रूपक साधु संग कर रहा है उन्होंने, एक तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का उपदेश उपाख्यान में उद्धृत करते हैं क्या ना ये भौतिक जगत में जो निपट मूर्ख है वो तो साधु संत को कोई परवाह नहीं करते हैं, ऐसे कि हम ये भक्त बनने का बावजूद भी यहां पर भी हम भेदभाव करते हैं, लेकिन साधु का भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्यों भगवान भगवत गीता में बताला है ही अपिचेत सुदुराचार भजनते मा अन्नन भाग साधुरव समंतव सम्यक व्यवस्थित हिस। यदि दुराचारी भी हो, यदि भगवान को अन्नन भाव में भजन कर रहा है, तब उनको क्या कहा जाएगा? साधु कहा जाएगा। तो नदी में एक भालू बह जा रहा था, तो दीव किनारे किया है, बहुत सारे यात्री भी खड़े हुए उसी में, और एक हमारे जैसे बद्धा जी उसी पानी में गिर गया। तो गिरना बाद उसको पहले किनारे उठने का प्रयास तक किया, लेकिन दैव जो किया हुआ वो भालू का साथ उनका संयोग हो गया। ये संसार में भी हम क्या है, ये कर्म जो है ये भालू का जैसे है, उससे हमारा भी संयोग है, अपराध का था संयोग है। हाँ, हमारा मंदिर में है, ये वर्णाश्रम धर्म पालन भी कर रहा है, साथ साथ हम दूसरा साथ का हमारे संयोग है, भुक्ति मुक्ति काम क्रोध लोभ मोह मद आश्चर्य ये सब में जकड़े हुए। तो उन्होंने क्या सोचा ना, इसको मैं ना बना के दूसरा जगह चला जाऊं, लेकिन वो तो मरा नहीं था, वो भी चाहता था कि मैं कोई सहारा मिल जाए तो मैं भी किनारे उठ के चला जाऊं, वो भी प्राण विकल में हाबो डुबो खा रहा था, प्राण जाए जाए अवस्था। तब क्या हुआ ना, दोनों का जो संजोग बस उन्होंने इसको पकड़ ले, वो भी उसको पकड़ ले, दोनों आपस में भिड़ गए। किनारे जो है उन्होंने बता रहा है, भाई आप एक कमर छोड़ दीजिए, ये उन लोग वो भालू बोल के जान नहीं, उनको मालूम नहीं है, वो भी प्राण विकल में उसको पकड़ के रखा है, और ये भी प्राण विकल में उसको पकड़े रखा है। लेकिन किनारे जो खड़े हैं एक कौन है ना, साधु। तो उन लोग बता रहा है, अरे भैया आप ये संसार रूपक जब कमर को आप छोड़ दे, क्योंकि शोध चेतना नहीं होने से भक्ति अंकुर ही नहीं होता है। भक्ति का परिभाषा आप जानते हैं कि अन्ना भेड़ा सता सुन्नम ज्ञान करना अनावृत। तो समस्त अभिला से हम जब शोध हो जाते हैं तब हमारे भक्ति होता है। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया कि मैं तो कार और ब्लैंकेट व कंबल को मैं छोड़ना चाहता हूं, लेकिन मेरा कोई एक कंबल नहीं छोड़ रहा है, हमारे भी यही दशा है, कर में लुक तो छोड़ दीजिए, यहां हम माला भी कर रहा है, तिलक भी किया है, एवं वैषम उचित आभूषण भी पहन लिए हैं, लेकिन इसको हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। किसको? काम क्रोध लोभ मोह मद आश्चर्य को, जो जब तक शरीर है ये सब रहेगा। तो नरोत्तम दास ठाकुर उसका कैसे है, ये शरीर से आप संयोग करके बा उसको दूसरा से जोड़ के इसको आप भक्ति में लगा सकते। काम कृष्णा कर्म अर्पण, जो कर्म है उसको तुम कृष्णा का लिए कर कीजिए, अपना के लिए नहीं। किसने इंद्रिया प्रतिबांधता धरे प्रेमोना, नीचे इंद्रिया प्रतिबांधता से काम। तो ये काम व क्रोध इसको हम छोड़ नहीं सकता, तो इसको भगवान का सेवा में लगाना, जैसे अर्जुन ने लगाया। उन्होंने तो बता दिए कि एक बार मेरा को दो सेना का बीच में राख दीजिए रथ को देके, जब राख दिए वहां तो उन्होंने देखे कि कोई दूसरा बार कोई नहीं थे, अपना परिवार ही थे, इसीलिए उन्होंने बतलाया कि मैं युद्ध करके जो राजस्व सुख भोग करूंगा तो ये परिवार को लिए करूंगा, परिवार साथ नहीं होता मैं किससे आनंद लूटूंगा। तो भगवान बतलाए कि तुम इन लोग हत्या नहीं करोगे तो भी मैं उनको हत्या करके रख रहा हूं। तब उन्होंने विश्वरूप दिखलाया। निमित्त मात्र सेवा सब साझी, मात्र तुम्हारे जस के लिए एवं कीर्ति के लिए तुम लड़ जाओ, काम तो मैं करके रखा हूं। भगवान पहले से हमको कर्म बंधन से छूटने के लिए विभिन्न प्रकार व्यवस्था करके रखे एवं कर्म फल को भोगने के लिए हमारे अधिकार नहीं है। भगवान गीता में बतलाए कर्मणा अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करने के लिए ये शरीर हम भगवान प्रदान किए हैं। 84 लाख जुनी भ्रमण करने का बाद दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला है, नहीं तो क्या हुआ ना, गर्भ बंधन से यदि ये मनुष्य शरीर से छुटकारा पाने के लिए हम प्रयास नहीं किया बा अपराध से मुक्त होने के लिए हम प्रयास नहीं किया तो फिर क्या होगा ना, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो काम किसने कर्मार्पणे, और क्या करेंगे ना, क्रोध जो हमारे अंदर जो है जो क्रोधाग्नि है उसको हम कहां प्रकट करेंगे ना, क्रोध भक्त डिसीजन है, जो भक्त का द्वेष करते हैं विरोध करते हैं तो यहां प्रश्न उठता है, कोई हमको बुरा बात भी बोल देते हैं हमारे भक्त मान लोग तो हम क्रोध उन्हें प्रकट कर सकते हैं, भगवान के लिए ये कर सकते हैं। लेकिन और अर्जुन का जैसे हम तीर चला के बाद गोली चला के जहां देखे नहीं मर सकते, ये वो गीता का उपदेश है। ये 6 प्रकार जो बुरा कर्म जो करते हैं उसको तो साथ साथ हत्या कर देना चाहिए, लेकिन ये भक्त का अंदर ये नहीं होता है। इसलिए एक क्रोध को हम दूसरा जो भक्त कर्मी लोग का उनको ऊपर हम कर सकते हैं अपना शरीर को रक्षा करने के लिए, क्यों कि जो रामायण में प्रसिद्ध कथा है अंगद जब संधि पत्र लेके लंका में गए थे, संधि पत्र में भगवान का जस गुणगान किया है उन्होंने, क्योंकि भगवान का गुणगान करना ये भक्त का स्वाभाविक वृद्धि होना चाहिए। कृष्ण माधव ना मौत कृष्ण गुणगान, तो ये मौत जो अहंकार रूपी रहे है हमारे शरीर में उसको हम भगवान का रोग गुण रूप लीला धाम परिकर इनको में काम लगा सकते। तो उन्होंने भगवान का गुणगान किया तो रावण ने क्या किया ना, बोला ये जो बंदर को मार के फेंक दिया जाए, मार के फेंक ही नहीं दिया जाए उसको ब्रेकफास्ट बना दिया जाए। तो उन्होंने पर बहुत उसको पिटाई किए बहुत अच्छा सरस, लेकिन रामचंद्र भगवान भी उनको मना किए थे कि वहां जाने के बाद कभी तुम युद्ध नहीं करना, भगवान का नाम को स्मरण कर रहे थे, लेकिन ऐसे हुआ कि उनको और एक बार जान से मार देने के लिए प्रयास जब किए तब तो उन्होंने क्या किए ना, अपना शरीर को बचाने के लिए भगवान का सेवा के लिए, अभी तो बहुत काम बाकी था तो पहले ही उन्होंने वहां पहुंचे थे, तब तो उन्होंने फिर युद्ध किए, जो अस्त्र में उनको पिटाई कर रहे थे वे मार रहे थे उसी अस्त्र से ही उनको फिर प्रहार किए। तो अपना शरीर को बच भगवान के सेवा के लिए एक क्रोध हम प्रकट कर सकते हैं। अर्जुन जैसे एक कुरुक्षेत्र युद्ध में ये किया, और क्या ना लोभ साधु संगे हरि कथा, जो हमारा लोभ है ये लोभ को हम भगवान का कथा में नियोज कर सकते हैं। जैसे भागवत में और भी उल्लेख है, और यहां पर भी लिखा हुआ है कि जो बुद्धि कलुषित है वो कभी भी भगवान को समझ नहीं सकता एवं कर्म बंधन से छूटने के लिए प्रयास करता ही नहीं, और कैसे वो छूटेगा। जो बुद्धिमान व्यक्ति है एक कलयुग में भगवान का संकीर्तन आंदोलन में योगदान कर सकता है। तेसाम वर्ण तिशा कृष्णम सांग पांगस पार्षदम जगई संकीर्तन प्राय जजंती ही सुमेधस। जब बुद्धिमान है वो क्या करेंगे ना, इस संकीर्तन आंदोलन में योगदान करेंगे। वो आप लोग तो इस संकीर्तन आंदोलन में योगदान किए हैं, लेकिन हमारा जो है क्या गलती है ना, हमारा जो अपराध युक्त हम नाम लेते हैं एवं नाम और धाम अपराध करते हैं एवं वैष्णव अपराध करते हैं, इसमें क्या ना हमारा कर्म बंधन तो हम काट दिए भगवान का नाम करके, लेकिन ये जो वैष्णव अपराध से हम जब तक नहीं बचते तब तक हम भक्ति जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। ये अपराध को एक पागला हाथी का साथ तुड़न किया गया है। बहुत सुंदर फूल बागान आप बना लिए नाम जप करके परिक्रमा करके कार्तिक व्रत एवं एकादशी व्रत करके प्रसाद ग्रहण करके साधु संग करके, लेकिन आप यदि कई शुद्ध भक्त का चरण में एवं वैष्णव का चरण में अपराध हो गया तो ये भक्ति लता आप आपका बढ़ने का कोई चांस नहीं है। ये पागला हाथी क्या करेगा ना, आपको जब फूल बागान जो बनाया आपने बा भक्ति लता को श्रवण कीर्तन जल में हमें सिंचन करके बहुत हरा भरा किया है, इसका नष्ट हो जाएगा। इसीलिए हमको हमेशा किया है ना साधु संग रूप का जो देवल बांध के रखने का। अरे हम यदि साधु का हमेशा दुष्ट त्रुटि देखते रहेंगे तो हमारा भक्ति बढ़ेगा कैसे। ऐसे है उपदेशामृत में कभी कभी शुद्ध भक्त का भी एक प्राकृतिक विपर्जय देखा जाता है। उसका उदाहरण रूप गोस्वामी देते हैं कि गंगा में बहुत सारे कचरा भी आ जाता है, मुर्दा भी आता है। मान लीजिए बारिश का मौसम है तो उसमें बहुत सारे कचरा उसमें चले आया, लेकिन उसमें गंगा का अपवित्र नहीं होता है। ऐसे ही वैष्णव का अंदर भी पूर्व कर्म अनुसार कभी कभी विपर्जय देखा जाता है तो उसको हम नहीं देखना चाहिए। जो अपिजय तो सुधराचार भजते मान अनन्य भाग उसी श्लोक का जो तात्पर्य में प्रभुपाद ने बतलाया नरसिंह पुराण से, यदि उनका दुष्ट दृष्टि को हम दर्शन करते हैं तो क्या होता है ना, हम भगवान का जो नियम को हम तोड़ रहे हैं, इसके प्रति हमको सावधान रहना चाहिए। इसलिए साधुरे समन्तव समक वैभव सीत ही सब। और यहां पर और भी बात लिखे हैं, जो लोग निर्धारित कर्म इंद्र तृप्ति के लिए नहीं अपितु भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं वे निसंकल है अर्थात प्रकृति के गुण के प्रभाव से मुक्त होते हैं, क्योंकि ये प्रकृति भगवान का अध्यक्षता में काम करता है। मया धक्कन प्रकृति सुरते सचरा चरम हेतु नानेकौंते जगत विपरिवर्तते। तो ये प्रकृति भगवान का अधीनता में काम करता है, और हम क्या करते हैं ना, यहां आने का बाद प्रभुपाद लिखते हैं कि चेतना शोध न रहने पर मनुष्य अपनी को ब्रह्मांड का स्वामी मानता है। आप मान लीजिए कि ये भारतवर्ष में जो नौ द्वीप है, इसे हम जम्बो द्वीप का अंतर्गत भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश में एवं मथुरा जिला अंतर्गत 12 वनात्मक जो अन्नत वृंदावन में हम कोई अच्छा बिल्डिंग में रहते हैं, कोई मंदिर में रहते हैं, कोई ठिकाना नहीं, लेकिन हम सोचते हैं क्या ना, अहंकार विमुढ़ात्मा करता हमिति मन्नते। जब अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक, उनसे हम प्रतियोगिता करते हैं। भोगने का मतलब क्या है? ये भगवान से प्रतियोगिता करना। तो यहां आके हम क्या मान लेते हैं ना, हमें ही भगवान मान लेते, जैसे मायावादी लोग मानते हैं। उन लोग तो संन्यास ग्रहण करने का बाद अपना को भगवान मानते हैं। दंड धारण मात्र नर नारायण भवत। लेकिन बद्ध जीव जो निपट मूर्ख जीव कुछ सीधे लाभ कर लिया तो वो अपना को भगवान मानते हैं। और उस भगवान का गति क्या होता है ना, कोई हॉस्पिटल में कोई एक्सीडेंट हो गया मर गया, लेकिन भगवान को ऐसे कभी नहीं होता है। हाँ, भगवान भक्तों को आकर्षण करने के लिए कभी कभी लीला प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु एक बार ब्राह्मण लोग का जस को बढ़ाने के लिए उन्होंने बतलाया कि अरे उन लोग का अरे चनामृत लाई, लेकिन उन लोग सब बोल रहे थे कि ये और वो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, ये कैसे हो सकता है। लेकिन ये ब्राह्मण का वैष्णव का चरणामृत में इतना शक्ति है इसको प्रदर्शन करने के लिए, क्योंकि जब तक महत्पाद रज से अभिषेक हमारे नहीं हो रहा है तब तक भक्ति में हम आगे नहीं जा सकता। एवं कृष्ण लीला में भी चैत्य भगवान स्वयं कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन, उन्होंने भी एक बार ये लीला प्रदर्शन किए कि मेरा सिर दर्द हो रहा है, दवाई क्या है ना, कोई भक्त का पद धूलि चाहिए। तो सब परेशान थे, क्यों कि भक्त का एकमात्र आराध्य देह प्राण स्वरूप है, तो उनका यदि शरीर खराब हो रहा है तो उन्होंने बेचैन में रहे एवं संतोष लाभ नहीं कर पा रहे थे, आनंद में नहीं रह पा रहे, तो कैसे भगवान को ठीक किया जाए। तो बड़ा वैदिक और स्वरूप कौन गए, नारद मुनि कहां पहुंचे, द्वारका में 16108 जो पाटम जो महिषी थे उनसे बतलाए, उन्हें तो साफ साफ मना कर दिया, ये तो नहीं हो सकता, हमको नरक जाना पड़ेगा। लेकिन भगवान का सिर दर्द भी ठीक नहीं हो रहा है, तो नारद मुनि वहां से फिर आए कहां, ब्रज लौट के। तो गोपी का तो प्राण स्वरूप ब्रजेंद्र नंदन बाजे सुदानंदन, उनको बिना तो उनका अरे समय व्यतीत नहीं होता गोपी लोग का, जैसे चैतन्य महापुरुष शिकाष्टक में बतलाए कि जुगायत निमेषण चक्षुषा प्रापसायताम सुन्नायतम जगत सर्व गोविंद बिरहणे में, एक एक पल जुग कोई जुग का बराबर होता था गोपी लोग का। तो जब नारद मुनि से सुने कि अरे भगवान को चाहिए पद धूलि चाहिए, तो गोपी लोग क्या किए, पानी में अपना पैर डुबा के फिर रेत में डुबा के भले कितना क्विंटल ले जाना ले जो, भले हमको नरक जाना पड़े। तो भगवान ये प्रदर्शन करते हैं भक्तों का मान बढ़ाने के लिए, लेकिन जो निपट मूर्ख और भौतिकवादी नास्तिक जो भगवान का अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं, उनका हालत कोई हॉस्पिटल में बाप बड़ा बीमारी होके मरेगा जो। और यहां पर और भी बात बतलाते हैं क्या, किंतु सोच चेतना न होने पर अपने को भगवान का सातो दास मानता, अपने को भगवान को सातो दास की पद पर बैठा कर अपन निरंतर उनके लिए काम करते हुए वास्तव में संतुष्ट हो जाता है। तो हमारे जीवक का जो स्वरूप है क्या, चैतन्य महाप्रभु बतलाए जीव का स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हम जब वो ये दासत्व तो भूल जाते हैं तब तो क्या हुआ ना, हमको निकष्ट तो माया तारे झापटिया धरे, तो माया क्या करती है थप्पड़ लगाती है। और जब साधु का कृपा हो जाता है और साधु का बात बा उनका जब बीरजावती हरि कथा श्रवण करते हैं तब क्या होता है ना, ये जब व्याधि आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक ये क्लेश है बा एक कष्ट है दूरीभूत हो जाता है। क्योंकि साधु का जब कथा है वह भगवान का भक्त का जो वाक्य है ये कैसे काम करता है, आप लोग चवन पर्स खाए होंगे अब गर्मी के लिए ले सकते हैं। तो सतांग प्रसंगा मम बीर्ज संविद भवंती हो तो रसायन कथा, ये भक्त का मुख से जो रसायन कैसे पान करेंगे ना, कंड रंध्र माध्यम से। सतांग प्रसंगा मम बीर्ज संविद, मेरा जो बीर्जवती हरिगत कथा राम रूप लीला गुण एवं परिकर का ये कैसे काम करेगा ना, चवन प्रास का जैसे, चवन प्रास खाने से हटा घटा तंदुरुस्त हो जाएंगे। लेकिन ये शरीर तो एक दिन छूट जाएगा, तब शरीर लेके नहीं जा सकते। हम लेके जाएंगे किसको ना, सूक्ष्म शरीर जो है मन बुद्धि अहंकार। तदुषणादास अववर्ग वर्तमानी श्रद्धा रतिर भक्ति का मनुष्य नति। तो साधु मुख से जब हम भगवान का बीरजवती हरिकथा श्रवण करेंगे तब तो क्या होगा, श्रद्धा भक्ति रति क्रमण सति, धीरे धीरे फिर हमारे उन्नति करते जाएंगे एवं एक कर्मबंधन से हम छूट जाएंगे। और प्रभुपाद और भी विशेष बात लिखते हैं कि नस्त कर्माणि बताता कि उनको कर्म को फल भगवान को प्रदान कर दिया जाता है, ऐसे लोग अपना कर्तव्य निर्वाह करते प्रतीत होते हैं, किंतु ऐसे कर्म निजे इंद्रिय तृप्ति के लिए न होकर भगवान के लिए संपूर्ण किया जाता है। क्योंकि इसे अर्जुन जब वह युद्ध करना नहीं चाहते थे तो भगवान क्या बतलाए, श्रेयर विधुर्म सुनिश्चित सुधर्म निधन श्रेय परधर्म भाव, एक कर्म जो आप करना बा आप अपना सुधर्म अनुसार आपको युद्ध नहीं करोगे तो, और परधर्म भाव क्या है ना, दूसरा का कर्म को हम नहीं अपना सकते। जो तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं क्षत्रिय का कर्म है उसे युद्ध करना है, एवं ब्राह्मण का कर्म क्या है ना, जदन जादन पठन पाठन दान प्रतिग्रह, या वैश्य का कर्म क्या है ना, कृषि गुरक्षा वाणिज्य वर्म वैश्य कर्म स्वभाव, जो वृत्ति परक अनुसार ये कर्म करना चाहिए। और क्षत्रिय को जो शूद्र का जैसे काम किया जाए तब मरने से भी बराबर और गैरत है, क्योंकि यह अपना कर्म नहीं है। इसीलिए भगवद गीता में दूसरा जगह में भी उसका उल्लेख है कि सहज कर्म कौन थे हो, अब सहज रूप से दूसरा वह भी हो त्रुटिपूर्ण भी हो, जैसे हमारे भक्त लोग हम माला जप करते हैं तो पहले से हम अपराध मुक्त तो नहीं हो सकते, इसीलिए हम मुक्त तो नहीं हो सकते, बोले हम माला बंद कर देंगे वो अभी ठंडा हो रहा है हम मंगल आरती नहीं आएंगे, हाँ अभी अभी ठंडापन में नहा नहीं सकते, गर्म पानी में नहाए और जैकेट स्वेटर मोजा पहन के आ सकते हैं, लेकिन अब वो इसके ठंडी का भय से आप मंगल आरती नहीं आएंगे तो हमारे भक्ति में उन्नति कैसे होगा। राम जप करने का समय भी हम अपराध से मुक्त नहीं रहा, नाम को छोड़ देंगे, वह इतना साल से हम जप कर रहा है हमारे भक्ति में कोई रुचि नहीं हो रहा है, नहीं, इसीलिए हम अंतिम तक हमें भगवान का जो साधन भक्ति को अपनाना है। अरे साधन भक्ति को जब तक तब तक हम करेंगे प्रेम प्रभु को प्राप्त करने के साथ। जो महाजन लोग प्रेम प्रभु प्राप्त नहीं किए थे, रूप गोस्वामी, सड़क गोस्वामी, जय जय सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, इन लोग दैनंदिन ये साधन भक्ति का वो जोरदार देखे निष्ठा सकार पालन करते थे। क्योंकि हम यदि इसको छोड़ देंगे जो नवनिकित भक्त है उन लोग भी ऐसे करेंगे। इसलिए भगवान गीता में बतलाए जद जद आतर श्रेष्ठ स्तुत देवतर जना, और मनीषी लोग भी उसको छोड़े नहीं और हमको भी ये आचार्य परंपरा में इसको निभाना है। भगवत तत्व निहित गुहाया महाजन जन गतस्य पंथा, ये भगवत तत्व ये गुहा में बा गोपनीय भाव में है। इसको कोई तर्क का साथ बा जुक्ति का साथ शास्त्र और जुक्ति देके उसको कोई प्रतिष्ठा नहीं कर सकता। इसको तब प्रतिष्ठा होगा बा अब अनुभूति कर सकते हैं जब हृदय बा चेतना शोध हो जाएगा। विषय छड़िया कबे शुद्ध होवे मन तबे अब हेरिब श्री वृंदावन। जब ये विषय वासना से हम मुक्त हो जाएंगे तब क्या होगा, ये वृंदावन दिखाई देगा। नहीं तो क्या, और बिल्डिंग भरा ही दिखाई देगा, पीछे रोड दिखाई देगा। एवं हम ये भक्त का दुष्ट दृष्टि और दर्शन करेंगे। क्योंकि आचार्य जो लोग ये प्रदर्शन किए कि जसोदा माता कन्हैया को थोड़ा से माखन के लिए या बांध दिए, इसलिए वो आचार्य जो किया कि ना बोले कि नहीं हमें को नहीं रहना है। चैतन्य महाप्रभु तो सती माता को बहुत परेशान किए, घर का सामान बचपन लीला में पाल लीला में, यानी कभी उनको डांटे नहीं। उनका दैन्यता वश तो उन्होंने क्या किए ना मायापुर चले गए। तो हम यहां सोचेंगे कि सौभाग्यवश हमको वृंदावन धाम में वास मिला है। क्योंकि जो 64 अंग है उससे जो मुख्य अंग है मथुरा वास एवं भागवत श्रवण एवं साधु संग एवं नाम कीर्तन, ये त्रुटि रूपक त्रुटि रहा है, फिर भी इसको हम सुधारने की कोशिश करना चाहिए। अरे तो तब क्या होगा ना, धीरे धीरे तेव भक्त हईबे उत्तम। तब क्या होगा ना, हम धीरे धीरे उत्तम कोटि को हम पहुंच जाएंगे। एवं उत्तम कोटि को जाने से क्या होगा ना, श्रद्धा भक्ति रति और परिपुष्ट होकर के चैतन्य महाप्रभु बतलाए कि पंचम पुरुषार्थ जो प्रेम पुमार्थ महान उसको हम प्राप्त कर सकते। भक्तिविनोद ठाकुर भजन में लिखते हैं कि कबे हवे बोलो से दिन हमार, कब होगा उसी दिन, कौन से दिन ना, अपराध घुंची शुद्ध नामे रुचि, कृपा बोले हवे हृदय संचार शुद्ध नाम। नहीं तो बहुत जन्म यदि हम श्रवण कीर्तन करेंगे बा कृष्ण का नाम उच्चारण करते हैं फिर भी हमको नहीं होगा। अक्षर दो सोलह नाम 32 अक्षर निकालते जा रहा है सारा जीवन। इसीलिए ये नाम अपराध धाम अपराध एवं अपना जो कर्तव्य कर्म है, जब ही गुरु का कृपा से साधु वैष्णव कृपा से हमको मिला हुआ है उसको दूसरी दृष्टि हो भी हो हमारे गलती हो हम सही ढंग से नहीं कर भी पाएंगे तब भी हम उसको छोड़ेंगे नहीं, अंतिम तक करेंगे। तो हमारे क्या होगा ना, नामे रुचि होले प्रेमे रे उदय प्रेमे ते हरि के पाए। क्योंकि कलिजुग में नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम नामारित्व अभिन्न। तो ये बुद्धि कब होगा ना, ये जब चेतना शोध हो जाएगा। इसीलिए आचार्य लोग बहुत सावधान कर दिया हम लोग को, साधु सावधान। विषरे हरण खाइले मड़ी न है मन, क्योंकि एक कर्म बंधन का कारण। तो इसमें प्रश्न होगा तो हमारे जो यहां धन संपद आ रहा है तो ये तो सब विषय का है, कोई ईमानदार से कमा रहा है कि हम देखें। हाँ इसमें क्या है ना, ये भगवान को हम अर्पित करके ग्रहण कर रहे हैं। हरे कृष्ण। इसका कोई प्रश्न है, समझ हो गया। श्रीमद् भागवतम की समवेत भक्त वृंद की गौर प्रेमानंदे।